हरे कृष्णा। एक हफ्ते पहले श्री रामनवमी का पावन दिवस था और आज श्री हनुमान जयंती का पावन दिवस है। दोनों श्री राम और हनुमान, इनको अलग नहीं कर सकते हैं। तो भगवान की योजना से उनके आविर्भाव दिवस को भी अलग नहीं कर सकते हैं, इसलिए दोनों पास पास में आ गए हैं। तो ये है भगवान और भगवान के भक्तों के बीच में संबंध। जब हम श्री राम की बात करते हैं तो अवश्य हनुमान का स्मरण होता है, और हनुमान की बात करते हैं तो श्री राम का स्मरण होता है। भगवान और भगवान के भक्त, इन दोनों को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। इस तरह से भक्त और भगवान की जोड़ बन जाती है, जिस तरह से हनुमान और राम की, जिस तरह से अर्जुन और कृष्ण की, जिस तरह से प्रहलाद और नरसिंह देव की। इस प्रकार से संसार में ये तीन अमर या शाश्वत चीजें हैं, भक्त, भगवान और इन दोनों के बीच में संबंध अर्थात भक्ति। यही तीन चीजें हैं वास्तव में। बाकी चीजें भौतिक शक्ति इत्यादि सब है, ये भौतिक ब्रह्मांड भी है, इसका सृजन भी होता है, पालन होता है, विनाश होता है, पुनः ये चक्कर चलता है। लेकिन वास्तव में सारे आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का सार अगर देखा जाए तो केवल ये तीन चीजें हैं, भगवान, भगवान के भक्त और उन दोनों के बीच में संबंध अर्थात भक्ति। और क्योंकि भगवान सबसे प्रसिद्ध है व्यक्ति इतिहास में, भगवान जितनी कीर्ति, जितना यश शायद किसी और को नहीं मिला होगा। इतने बड़े बड़े राजा आए गए इतिहास में, लोग उनको भूल जाते हैं, लेकिन हर एक देश में, हर एक प्रांत में, हर एक संस्कृति में भगवान की कोई ना कोई धारणा अवश्य रहती है, किसी न किसी प्रकार की धार्मिकता अवश्य रहती है। और भगवान का ये एक ऐश्वर्य है। पराशर मुनि भी बताते हैं, ऐश्वर्यस्य समाग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रेय ज्ञानम वैराग्ययोश्चैव सन्नम भव इतिंगना, कि भगवान के छह प्रकार के ऐश्वर्य होते हैं। सबसे धनी वो होते हैं, सबसे शूरवीर शक्तिशाली वो होते हैं, सबसे ज्यादा ज्ञान उनके पास होता है, सबसे ज्यादा सौंदर्य उनके पास होता है, सबसे ज्यादा वैराग्य उनके पास होता है, और सबसे बड़ी प्रसिद्धि यश वो भी उनका ही होता है। तो जिस प्रकार से भगवान के ये छह ऐश्वर्य हैं, तो भगवान के भक्त, क्योंकि उनका इतना निकट का संबंध होता है भगवान के साथ में, इसलिए भगवान के ऐश्वर्य में वो भी भागीदार हो जाते हैं। जिस प्रकार से एक अगर बहुत धनी व्यक्ति होता है तो उसके पुत्र जो होते हैं वो भी उस व्यक्ति के ऐश्वर्य के भागीदार हो जाते हैं। अगर अमीर व्यक्ति बड़े गाड़ी में घूमता है तो उसके लड़के भी घूमते हैं। अगर बड़ा व्यक्ति किसी बड़े घर में रहता है, उसके पुत्र भी उस बड़े घर में रहते हैं। और अगर कोई व्यक्ति बड़ा प्रसिद्ध हो तो उसके लड़के भी प्रसिद्ध हो जाते हैं, ये बिरला का लड़का है, ये टाटा का लड़का है। तो इस प्रकार से जो भी ऐश्वर्य इत्यादि किसी बड़े आदमी के होते हैं, उसके पुत्रों को भी होते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान, उनके पुत्र तो उनके भक्त हैं। तो जो छह ऐश्वर्य भगवान के पास हैं, भक्तों के पास भी ये छह ऐश्वर्य आ जाते हैं, ये स्वाभाविक है। तो यश या कीर्ति या प्रसिद्धि, ये भी भगवान का एक ऐश्वर्य है, जो कि भगवान के पास असीमित मात्रा में है। तो हनुमान जी प्रभु राम के नित्य शाश्वत भक्त हैं। हनुमान जी का नाम अमर है क्योंकि वो हमेशा रहेगा, और इस प्रकार से हनुमान जी की कीर्ति भी हमेशा रहेगी। चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत में गए थे संन्यास लेने के पश्चात, तो उनकी मुलाकात रामानंद राय से हुई, जो उस प्रांत के राज्यपाल थे। वो जगह तुंगभद्र नदी के जो तट पर जो भूमि है, वो गजपति राजा प्रताप रुद्र उड़ीसा के राजा के वश में था, और उनकी ओर से उनका प्रतिनिधित्व करते हुए रामानंद राय वहां पर राज्यपाल थे। वास्तव में रामानंद राय भगवान श्री कृष्ण के और चैतन्य महाप्रभु के बड़े शुद्ध भक्त थे। हालांकि भौतिक दृष्टि से ऐसे लगता था कि ये बड़े भौतिक व्यक्ति हैं, शानदार कपड़ों से पहनकर घूमते थे, ऐश्वर्य के वातावरण में रहते थे, लेकिन हृदय से बहुत ही ऊंचे महाभागवत भक्त थे। जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में निवास करते थे, तो अंत में अपने संन्यास लीला के अंत में वो केवल 3-4 भक्तों के निकट रहकर कृष्ण भक्ति के उच्चतम श्रेणी का आस्वादन लिया करते थे। और इन भक्तों के नाम थे स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रामानंद राय। तो जब रामानंद राय से उनकी मुलाकात हुई, तो बहुत लंबा संवाद हुआ, और इस संवाद के दौरान महाप्रभु ने उनसे कई प्रश्न भी किए, और इन प्रश्नों में से कई प्रश्न इस प्रकार से थे कि दुनिया में सबसे बड़ी विद्या कौन सी है? कृष्ण भक्ति की विद्या। तो रामानंद राय उत्तर देते गए, संसार में सबसे बड़ा दुख कौन सा है? तो रामानंद राय ने जवाब दिया, टीवी से दूर होना। ऐसा नहीं दिया, सबसे बड़ा संसार में दुख है भक्तों से दूर होना। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु प्रश्न करते गए और रामानंद राय जवाब देते गए। तो एक प्रश्न चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि सबसे बड़ा यश, सबसे बड़ी कीर्ति, सबसे बड़ी प्रसिद्धि संसार में क्या है? तो रामानंद राय ने जवाब दिया, सबसे बड़ी प्रसिद्धि या कीर्ति है भगवान के भक्त की। जो भगवान का भक्त हो जाता है, तुरंत उसका यश सब जगह फैल जाता है। और वास्तव में हम देखते हैं, हम सबका अनुभव है कि अगर हम सब अपने अपने घर में होते, भौतिक जीवन में होते, तो हमारा जो सामाजिक केंद्र, सामाजिक जो चक्र है, वो ठराविक रह जाता। हम अमुक लोगों के बीच में घूमते, उठते, बैठते, फिरते। लेकिन आज भक्त होने के बाद में कितने हजारों लोग हमें जानते हैं, देखो ये हरे कृष्ण वाले हैं, हरे कृष्ण मंदिर में जाते हैं, हरे कृष्ण में सेवा करते हैं और प्रचार करते हैं, इधर उधर लोग जानने लगे हैं, क्योंकि बाहर जाते हैं, लोगों के सामने आते हैं। तो न चाहते हुए भी या चाहते हुए भी, जो भी हो, यश कीर्ति प्रसिद्धि मिल जाती है भगवान के भक्तों को। इसका मतलब है कि भगवान के भक्तों को बहुत सावधान होशियार रहना चाहिए, कहीं अगर यहां तक चले जाए तो भी भक्ति नष्ट हो जाती है। इसलिए हमेशा भक्त को चाहिए कि नम्र रहे। इसलिए हनुमान ये आदर्श उदाहरण है कि किस प्रकार से इनकी इतनी प्रसिद्धि है, इतनी कीर्ति है, इतना गुणगान होता रहता है, इतने करोड़ों करोड़ों साल से उनका गुणगान होते रहा है, लेकिन फिर भी हनुमान की भक्ति पर बिल्कुल असर नहीं पड़ा है। हनुमान उतने ही नम्र आज भी है, उनकी सेवा भावना में तनिक भी कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो इस प्रकार से वास्तव में, क्योंकि हनुमान जी इतने शुद्ध भक्त हैं श्री राम के, इसलिए श्री राम के गुणगान के साथ साथ हनुमान का गुणगान भी होता है। वैसे श्री राम का रूप विष्णु का ही अवतार है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा भिन्न भी है। हम देखते हैं कि विष्णु के स्वरूप में भगवान के चतुर्भुज होते हैं, 4 हाथ होते हैं, और उन 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण करते हैं, और फिर वो गरुड़ के ऊपर सवार होकर जाते हैं। लेकिन श्रीराम के 2 हाथ हैं, 4 नहीं। शंख, चक्र, गदा, पद्म हाथों में धारण नहीं करते, बल्कि धनुष बाण धारण करते हैं, और गरुड़ के ऊपर सवार होकर नहीं जाते हैं। उनका वाहन कौन है? हनुमान जी। हनुमान जी पर सवार होकर वो चलते हैं। जब पहली बार किष्किंधा में हनुमान जी की दर्शन किया श्री राम और लक्ष्मण का, उस समय श्री राम और लक्ष्मण सीता को ढूंढते हुए इधर उधर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने कबंध नाम के एक असुर का वध कर दिया। बहुत कठिनाई से, इतना कठिन था उसका वध करना कि उसको मार नहीं पाए वो, लेकिन अंततः उसको इतना घायल कर दिया कि जिंदा ही उसको जमीन में रख दिया, क्योंकि उसको एक वरदान मिला था कि इस प्रकार से उसकी हत्या नहीं हो सकती, कि केवल जब उसको जमीन में डाला जाएगा तब वो मर जाएगा। तो वास्तव में वो थे एक गंधर्व, ऊपर के लोक के निवासी। तो जब उसकी हत्या कर दी श्री राम और लक्ष्मण ने, तो ऊपर मृत्यु के बाद में उसका वो गंधर्व का रूप ऊपर आया आकाश में, और उस रूप को धारण करते हुए उसने श्री राम और लक्ष्मण के सामने हाथ जोड़कर कहने लगे कि वास्तव में पिछले जन्म में मैं गंधर्व था, लेकिन शाप की वजह से मुझे ऐसा शरीर धारण करना पड़ा। मैं जानता हूं कि किस वजह से आप यहां आए हैं, तो आपकी मदद सुग्रीव नाम के वानर सेना के राजा करेंगे जो कि किष्किंधा में है। तो आप कृपा करके तुरंत किष्किंधा की ओर चलिए और सुग्रीव के साथ में आप मित्रता स्थापित कीजिए। सुग्रीव की सेना आपकी सहायता करेगी और सुग्रीव को भी आपकी आवश्यकता है, क्योंकि सुग्रीव के भाई वाली ने सुग्रीव को राजपद से हटाकर खुद वाली राजपद पर बैठ गया है, इसलिए आप दोनों की जोड़ी अच्छी बनेगी, क्योंकि दो लोग जो कि बहुत ही जरूरत में है, एक दूसरे को मदद अच्छी तरह से करते हैं, एक दूसरे की परिस्थिति अच्छी तरह से समझते हैं और एक दूसरे की सहायता करते, दोनों का लाभ होता है। जब किसी एक व्यक्ति को बहुत जरूरत होती है और दूसरे व्यक्ति को नहीं, तो फिर ये जोड़ी अच्छी जमती नहीं है, लेकिन जब दोनों लोग व्यक्ति मिलते हैं जिनको दोनों को जरूरत है, तो फिर जोड़ी अच्छी जम जाती है। तो ये सुनकर श्री राम और लक्ष्मण दक्षिण में गए किष्किंधा की ओर, और वहां पर ऋषिमुख पर्वत का दर्शन किया। और जैसे ही आगे चल रहे थे, ऊपर सुग्रीव ने देखा दूर से कि अरे ये कौन दो क्षत्रिय शूरवीर नवयुवक आ रहे हैं, देखकर मुझे घबराहट होती है, इतने शक्तिशाली नजर आ रहे हैं, ऐसे लगता है कि शायद ये वाली के कोई जासूस हैं या उनके कोई दूत हैं, मेरी हत्या करने के लिए इधर अवश्य आए। अब वैसे वाली इतना शक्तिशाली था कि इसकी कोई सीमा नहीं है। आपको मालूम होगा कि रावण को केवल दो लोगों ने, दो क्षत्रियों ने हरा दिया था। बता सकते हैं, वैसे रावण ने सारे ब्रह्मांड को वश में कर लिया था, लेकिन श्री राम ने अगस्त्य मुनि से पूछा, जब अगस्त्य मुनि ये वर्णन कर रहे थे रावण के शक्ति का, तो श्री राम ने पूछा, ये वार्तालाप तब हो रहा था जब श्री राम ने रावण की हत्या कर दी थी और वो अयोध्या लौट गए थे और वो राजगद्दी पर बैठे थे, राजा हुए थे अयोध्या के। उस समय अगस्त्य ऋषि आए थे, तो अगस्त्य ऋषि से जब श्री राम ने पूछा रावण की शक्ति का वर्णन सुनने के बाद में कि ऐसे कोई व्यक्ति क्या हुए हैं मेरे पहले जिन्होंने रावण को हरा दिया होगा, तो अगस्त्य मुनि ने कहा, हाँ दो व्यक्ति थे, उनमें से एक थे वाली। और ऐसा हुआ कि रावण जब किष्किंधा में आया था, सब जगह सब राजाओं को हराकर किष्किंधा से गुजर रहा था, तो किसी ने कहा उनसे कि आपको कोई योग्य प्रतिद्वंदी चाहिए, तो वानरों के राजा वाली के पास चाहिए जो कि किष्किंधा में ठहरे हैं। तो रावण गए किष्किंधा, तो वहां पर जब वो आए तो वाली नदी के तट पर बैठकर अपने गायत्री मंत्र इत्यादि संध्या वंदन कर रहे थे और अपना मंत्रों का जाप कर रहे थे, तो मग्न थे अपने ध्यान में। तो रावण आए तो चुपके से पीछे से आए, हल्के से, ताकि वाली को दिखाई न पड़े, वाली को सुनाई न पड़े, लेकिन अपने आंखों के कोने से वाली ने देख लिया कि ये कोई राक्षस आ रहा है, इसकी कोई जो इच्छाएं हैं वो दुष्ट लग रहे हैं, अच्छे नहीं लग रहे हैं, नेक विचार लेकर नहीं आ रहा है मेरे पास में। तो वाली ने ऐसे पेश आए जैसे कि उन्हें पता ही नहीं, चुपचाप अपने धार्मिक क्रियाएं करते रहे, लेकिन रावण जब पीछे से आए, लपकने ही वाले थे वाली के ऊपर कि वाली ने तुरंत घूमकर रावण को पकड़ लिया और उसका गर्दन जो है अपने हाथों में ऐसे बाहों के नीचे पकड़ लिया और अपना जो क्रिया है वो चालू रख दिया। और रावण उधर बहुत संघर्ष कर रहे थे छूटने के लिए वाली के हाथों से, लेकिन यूं पकड़ के रख लिया, पकड़ के छोड़ा नहीं। और इतना ही नहीं, और बहुत कुछ किया वाली ने आगे। क्या किया? वाली का नियम होता था कि वो पृथ्वी के चारों कोने में जाकर अपनी धार्मिक क्रियाएं रोज करती थी, दक्षिण भाग में, उत्तर भाग में, पश्चिम भाग में और पूर्व भाग में। तो वो गए समुद्र के तट पर पश्चिम ओर, पर पश्चिम ओर कैसे गए? उड़कर गए, छलांग मार कर गए। वाली में वो शक्ति थी, वाली थे इंद्र के पुत्र, तो छलांग मार दी वाली ने रावण को पकड़ते पकड़ते। तो रावण वहीं से टांग रहे थे, टांगते हुए वाली उड़ गए और पश्चिम की ओर गए सागर के तट पर, वहां उनके सारे संध्या वंदन जो भी कर लिए। फिर गए उत्तर सागर में, मतलब आज जो रशिया है देश है ना, क्योंकि सागर का उत्तरी तट तो उधर है, आर्कटिक ओशन कहते हैं उसको, तो उस भाग में गए जो पृथ्वी के पूरे उत्तर भाग में। फिर से उस समय रावण फिर भी ऐसे ही थे, उड़ते छलांग मार दी यहां से भारतवर्ष से रशिया में रावण को पकड़ते हुए। बेचारे रावण थड़क फड़क रहे थे, लेकिन वाली ने छोड़ा नहीं और फिर पूरब की ओर सागर के तट पर गए, वहां उनके कार्य किए और फिर से लौट कर आए। तो चार पूरे विश्व का भ्रमण करके आए, अपने आराम से अपने धार्मिक क्रियाएं कर लिए और फिर लौट कर आए। तब तक थोड़े थके हुए थे वाली, क्योंकि रावण भी काफी शक्तिशाली था, तो फिर छोड़ दिया रावण को ये देखने के लिए कि ये कौन है बदमाश, कौन मेरा सामना करने आया है। तो रावण को छोड़ दिया उसका मुंह देखने के लिए कि ये कौन है। और जब रावण तब तक अभी सोचने लगा कि ये वास्तव में शक्तिशाली व्यक्ति है, फिर रावण ने प्रणाम किया और कहा कि हम मान गए आपको, आप बड़े शक्तिशाली, आप जैसा हमने किसी को नहीं देखा है, इसलिए आपसे हमें दोस्ती करनी चाहिए, दोस्ती का हाथ मैं बढ़ाता हूँ आपका। तो वाली ने स्वीकार कर लिया और इस प्रकार से वाली और रावण के बीच में समझौता हो गया। तो इस प्रकार से वाली एक व्यक्ति था जिसने रावण को हरा दिया था। दूसरे व्यक्ति और थे, वो कौन थे? कार्तिवीर अर्जुन। जब एक बार रावण इधर उधर गए थे तो महिष्मती नर्मदा के तट पर पास में वहां पहुंचे और देखा कि जब वो पानी में स्नान करने गए तो अचानक पानी का प्रवाह जो है वो एकदम कम हो गया, बिल्कुल पानी बंद हो गया, वो भी इतने बड़े नदी में। तो रावण ने आश्चर्यचकित हो गए कि ये कैसे हो गया। तो फिर आगे चल के नदी में जमीन पर चलते चलते उन्होंने देखा एक अद्भुत दृश्य कि वहां एक राजा खड़ा है जिसके हजार हाथ है, सहस्र अर्जुन, कर्तव्यवीर अर्जुन, और उसने अपने हजार बहाव से नर्मदा के पानी को ही रोक दिया था, वैसे पानी ही नहीं जा रहा था आगे। तो ये देखकर रावण को क्रोध आया कि मैं स्नान कर रहा था, इसने मेरे स्नान में, मेरे मनोरंजन में इसने बंधन डाल दिया है। तो लड़ाई की और आसानी से कार्तिकवीर अर्जुन ने रावण को हरा दिया। तो फिर रावण ने भी कार्तिकवीर अर्जुन से समझौता कर लिया, दोस्ती का हाथ बढ़ाया और कार्तिकवीर अर्जुन ने भी इसको स्वीकार कर लिया। तो इस प्रकार से वाली इतना शक्तिशाली था कि उसने रावण को भी हरा दिया था। और कैसे हराया था उसका वर्णन आपने सुना, आसानी से, बिल्कुल कोई कठिनाई के बिना। तो सुग्रीव वाली का बहुत भयभीत था, बहुत डरता था वाली से, यहां तक कि वो रात को सो भी नहीं पाते थे। और जब भी कोई देखते थे कोई नया व्यक्ति आ रहा है किष्किंधा में, तो उस समय घबरा कर इधर उधर जाते। तो जब उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण को देखा तो इतने घबरा गए कि वो सोचने लगे कि अब क्या होगा, इधर से उधर कूदने लगे। तो हनुमान जी ने उनको समझाया कि आप ये ऋषिमुख पर्वत पर हैं, क्योंकि यहाँ पर मतंग ऋषि का वरदान है कि यहाँ पे आपकी सुरक्षा होगी, और वाली इस क्षेत्र में नहीं आ सकता, क्योंकि मतंग ऋषि ने वाली को श्राप दिया था कि अगर आप यहाँ पे आओगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए सुग्रीव वाली के डर से वो ऋषिमुख पर्वत के ऊपर ही निवास करते थे, क्योंकि वहां पर कम से कम वाली प्रवेश नहीं कर सकते थे इस श्राप की वजह से। लेकिन हनुमान कहने लगे, इतना सब वरदान मिलने पर भी, वाले के ऊपर श्राप होने पर भी आप इतना क्यों घबरा रहे हैं, और वैसे भी ये लोग हमारे कोई शत्रु नहीं लगते। तो वाली ने कहा, ठीक है हनुमान जी, आप जाकर देख लो, इन दो से मिल लो कि ये कौन है। तो हनुमान जी आए पहले। अभी हनुमान जी भी परम योगी हैं, तो उन्होंने अपना वेश बदल लिया और एक ब्राह्मण का वेश धारण करके वो श्री राम और श्री लक्ष्मण के सामने आए और सुंदर संस्कृत भाषा में बोलने लगे। वैसे तो अलग अलग प्रांतों में अलग अलग प्राकृत भाषाएं चलती थी। प्राकृत भाषाएं मतलब देशी भाषाएं अलग अलग। संस्कृत के थोड़े परिवर्तित रूप होते हैं। संस्कृत मतलब क्या है? संस्कृतम, शुद्ध जो है, शुद्ध किया हुआ जो भाषा है उसको संस्कृतम कहते हैं। तो संस्कृतम से संस्कृत हुआ। संस्कृत भाषा से फिर और परिवर्तन होते 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 ये प्राकृत भाषाएं सब आ गई और सारी भाषाएं जो है अंततः संस्कृत से ही आती है। तो इस प्रकार से शुद्ध भाषा में बोलने लगे हनुमान ब्राह्मण के रूप में और श्री राम लक्ष्मण को कहा कि लक्ष्मण ऐसे लगता है कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बहुत ही सुशिक्षित है और इतनी शुद्ध भाषा बोल रहा है, इससे पता चलता है कि ये कोई विद्वान है, ये कोई पंडित है, नहीं तो कोई ऐसे चुन चुन के उपयुक्त शब्दों का प्रयोग करना, जिस ढंग से वो बोल रहे हैं, बोलने का ढंग, उच्चारण करने का ढंग, इससे लगता है कि ये बड़ा विद्वान व्यक्ति है। और उस प्रकार हनुमान ने फिर अपना असली रूप प्रकट किया और कहने लगे कि मैं हनुमान हूँ, मैं सुग्रीव का साथी हूँ। और श्री राम ने भी अपना परिचय दिया और फिर राम ने कहा कि हम सुग्रीव के साथ मित्रता का हाथ बढ़ाने के लिए आए हैं। तो हनुमान बड़े प्रसन्न हुए। फिर हनुमान ने उनको अपने कंधों पर बिठाया, क्योंकि राम ने कहा कि हम चलते चलते, हम दंडकारण्य से आ रहे हैं, चलते चलते अब यहाँ किष्किंधा तक पहुंचे हैं, इसलिए हम बहुत थके हुए हैं, अब हम पहाड़ पर नहीं चल सकते। तो हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, तो अपने कंधों पर बिठाया और ऊपर सुग्रीव के पास ले गए। और आगे जब हनुमान जी लंका से लौट कर आए थे सीता को ढूंढ निकालकर, उस समय जब श्री राम और वानर सेना किष्किंधा से दक्षिण की ओर बढ़ रहे थे जमीन पर, तो उस समय वानर सेना इतनी तेजी से जा रही थी कि राम और लक्ष्मण उनके साथ में नहीं जा पाए। हालांकि भगवान सबसे शक्तिशाली है, सबसे तेज चल सकते हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य की लीला कर रहे थे, इसलिए एक मनुष्य वानर का साथ नहीं दे सकता, वानर तो बहुत जल्दी आगे चला जा सकता है। तो उस समय हनुमान ने भी राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर बिठा लिया था और छलांग मारते मारते लपक लपक के बहुत तेजी से जा रही थी सारी वानर सेना। और आगे चलकर भी जब लंका का युद्ध हो रहा था, उस समय भी वानर सेना के तो कोई वाहन नहीं थे, श्री राम लक्ष्मण के कोई वाहन नहीं थे, उधर जो राक्षस सेना थी उनके कई सैनिक अपने अपने रथों पे आ रहे थे, कई सैनिक घोड़े पर बैठ के आ रहे थे, कई सैनिक हाथियों पर बैठकर आ रहे थे। तो इस प्रकार से उन राक्षस सैनिकों के और सेनापतियों के बड़े बड़े रथ इत्यादि वाहन इत्यादि होते थे, लेकिन वानर सेना का कुछ भी नहीं था उनके साथ में, श्री राम श्री लक्ष्मण के साथ में भी कुछ भी नहीं था। तो बीच बीच में हनुमान जी जो दोनों श्री राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर बिठाते और वही वाहन बनकर, सारथी बनकर वो उनको युद्ध में ले जाते। रामायण में ऐसे कई बार वर्णन आता है। तो इस प्रकार से जैसे कि गरुड़ जी ने श्री विष्णु जी की सेवा की नारायण की, तो ठीक उसी प्रकार से हनुमान जी ने श्री राम और श्री लक्ष्मण की सेवा की। तो यह है सेवा। हनुमान जी एक दास रूप में भगवान की सेवा करते हैं। दास रूप मतलब वो प्रभु की आज्ञा का पालन करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आपको पता है कि 9 प्रकार के पद्धतियां होती हैं जिनमें हम भक्ति कर सकते हैं, ये प्रहलाद बताते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चिन नव लक्षणा। भक्ति के 9 लक्षण है या 9 पद्धतियां हैं कि हम श्रवणम करके अर्थात भगवान के बारे में सुनकर भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, कीर्तनम भगवान का गुणगान करके हम भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, स्मरणम भगवान का स्मरण करके, वंदनम वंदना अर्पण करके, फिर अर्चनम भगवान की अर्चा विग्रह की सेवा करके, दास्यम उनका दास बनके, सख्यम उनका मित्र बनके, आत्मनिवेदनम सब कुछ अर्पण करके, तो रूप गोस्वामी पाद बताते हैं कि ये नौ प्रकार के विधियां जो है भक्ति में मार्ग हैं, इनमें से किसी भी मार्ग का पालन करके, इनको स्वीकार करके हम भक्ति में परिपूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये नौ पद्धतियों के अलग अलग उदाहरण हैं। परीक्षित महाराज ने केवल श्रवण करके अपने जीवन को सफल बना दिया। सुखदेव महाराज ने केवल कीर्तन करके, केवल भगवान की कथा बोलकर अपना जीवन सफल कर दिया। प्रहलाद महाराज केवल भगवान का स्मरण करके उन्होंने अपना जीवन सफल बना दिया। अक्रूर जो कि कृष्ण के मामा थे, केवल भगवान के प्रति सुंदर स्तुतियां और प्रार्थना अर्पण करके उन्होंने अपना जीवन सफल कर दिया। पृथु महाराज जो कि भगवान के शक्त्यावश अवतार भी थे, प्रजा पालन की शक्ति उनमें थी, लेकिन उन्होंने अर्चा विग्रह की सेवा करके, मूर्ति सेवा करके अपने जीवन को सफल बना दिया। अर्जुन वो सख्य भाव में, सख्य रूप में भगवान की सेवा करके उन्होंने अपना जीवन सफल बना दिया। लक्ष्मी देवी उन्होंने श्री नारायण की पाद सेवा करके उन्होंने अपना जीवन सफल बना दिया है। और बलि महाराज उन्होंने अपना सब कुछ वामन देव के रूप में जब भगवान विष्णु आए उनको समर्पित करके अपना जीवन सफल बना दिया। और हनुमान जी उन्होंने दास्य रूप में भगवान की श्री विष्णु को, जो कि राम के रूप में आए थे, उनकी सेवा करके अपना जीवन सफल बना दिया। तो इस प्रकार से हनुमान जी दास्य रूप के प्रतीक हैं। जब दास्य भाव की सेवा की बात आती है तो हनुमान जी का स्मरण आता है, क्योंकि भगवान के प्रति जो भक्ति है, प्रेम है, वो अलग अलग भावों में की जाती है, अलग अलग रसों में की जाती है। जिस प्रकार से ये संसार में भी हम देखते हैं कि अलग अलग तरह के संबंध होते हैं, पति पत्नी का संबंध होता है, फिर माता पिता और बच्चों का संबंध होता है, मित्र और मित्र का संबंध होता है, एक सेवक और प्रभु का संबंध होता है, तो ये संसार में भी अलग अलग तरह के संबंध है। और ये अलग अलग संबंधों में अलग अलग प्रकार का एक स्वाद या सुख मिलता है। जो सुख एक व्यक्ति को अपने पत्नी के साथ या पति के साथ में हो जाता है, वो एक मित्र के साथ में जो संबंध होता है उसके समान नहीं है। दोनों में जो आनंद एक व्यक्ति को मिलता है वो अलग अलग प्रकार का आनंद है। कभी कभी हम देखते हैं कि एक व्यक्ति कभी कभी अपने घर से थोड़ा छूटकर अपने मित्रों के साथ में बैठकर गपशप करने का इच्छुक रहता है, फिर अपने मित्रों से तंग होकर अपने बच्चों के साथ में बैठकर खेलने का इच्छुक होता है, और कभी कभी उसको इच्छा होती है कि थोड़ा दफ्तर में जाएं, थोड़ा ऑर्डर करें, ये लाओ वो लाओ अपने सेवकों को, कभी वो भाव का आस्वादन करने का मन हो जाता है। इसका मतलब है कि अलग अलग प्रकार के जो संबंध होते हैं संसार में, उनसे हमें अलग अलग प्रकार का सुख मिलता है, जिसको रस कहते हैं। लेकिन ये संसार में सभी कुछ विकृत है, सभी कुछ मिलावटी है, सभी कुछ नकली है, इसलिए थोड़ा बहुत सुख जो स्वाद मिलता है उसका खट्टापन भी ज्यादा होता है। इसलिए इन संसार के संबंधों में दुख ज्यादा होता है और सुख कम, लेकिन फिर भी उस क्षणिक भी बूंद मात्र सुख के बराबर जो हमें आस्वादन करने मिलता है, इसलिए हम सब इन संबंधों के पीछे पड़े हैं। वास्तव में ये पांच प्रकार के जो संबंध हैं इस संसार में, ये विकृत प्रतिबिंब है उन असली संबंधों का जो कि हमारे भगवान के साथ संबंधित है। तो जिस प्रकार से यहाँ हम किसी के प्रभु के रूप में सेवा कर सकते हैं, पति या पत्नी के रूप में सेवा कर सकते हैं, बच्चों के रूप में सेवा कर सकते हैं इत्यादि, उसी प्रकार से भक्ति में भी हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो ये भक्ति के पांच रस होते हैं। एक है शांत रस। शांत रस में सेवा की भावना इतनी विकसित नहीं होती है। जैसे भगवान के धाम में जो भी पेड़ हैं, गाय हैं या जल है, ये सब भगवान की सेवा शांत रस में कहते हैं। और भी ऐसे भक्त हैं जैसे चार कुमार हैं, नव योगेंद्र हैं, भगवान की सेवा इस रूप में करते हैं, शांत रस में। और वैसे आगे बढ़कर है दास्य रस। दास्य रस से आगे बढ़कर है सख्य रस। सख्य रस मतलब जहां भगवान के साथ मित्रता की भावना है, जैसे वृंदावन में ग्वाल बाल, जैसे कि द्वारका में उद्धव कृष्ण के साथ में इत्यादि। और आगे चल के फिर है वात्सल्य भाव, जैसे कि माता यशोदा और नंद महाराज का कृष्ण के प्रति, जैसे कि दशरथ महाराज और कौशल्या देवी का था श्री राम के प्रति वात्सल्य की भावना, और श्रृंगार रस और माधुरी रस सबसे ऊंचा, जैसे कि गोपियों का कृष्ण के प्रति वृंदावन में, रानियों महारानियों का द्वारका में द्वारकाधीश कृष्ण के प्रति, और फिर सीता देवी का राम के प्रति, ये सारे श्रृंगार रस या माधुरी रस के उदाहरण हैं। तो इन अलग अलग पांच प्रकार के रसों में ये दास्य रस जो है ये भी अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं। जैसे वृंदावन में कृष्ण के कई दास रूप के भक्त हैं, आप कोई बता सकते हैं वृंदावन में कृष्ण के दास्य रस का आस्वादन करने वाले भक्त कौन है? हाँ बहुत अच्छा, रक्तक चित्रक पत्रक, ये बाल बाल है लेकिन सेवा करते हैं। वैसे सभी लोग सेवा करते हैं कृष्ण के, लेकिन दास भाव में करने वाले ये तीन प्रमुख नाम दिए जाते हैं, रक्तक चित्रक पत्रक। और फिर द्वारका में कृष्ण के सारथी कौन थे? कृष्ण तो अर्जुन के सारथी बने, अपने भक्त के दास वो बने, लेकिन भगवान के दास कौन थे? दारुक, दारुक थे उनके सारथी। और इस प्रकार से हर एक लीला में भगवान की कोई दासी रस में भी होते हैं। तो अयोध्या में जब प्रभु रामचंद्र के रूप में आए तो हनुमान जी दासी रस में उनकी सेवा करते थे। तो ये है हनुमान जी का स्थान। तो इस प्रकार से हनुमान जी ने अलग अलग तरह से भगवान की दासी रूप में सेवा की है, और पूरी तरह से बिना कोई भौतिक इच्छा के शुद्ध सेवा करने वाले दासों में से हनुमान का नाम सबसे आगे माना जाता है। वैसे मूल भगवान का स्वरूप तो कृष्ण का है, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम्। भगवान श्री कृष्ण आदि स्वयं भगवान है, और इनसे सारे अन्य विष्णु रूप प्रकट हो जाते हैं, जैसे कि अलग अलग नारायणों का रूप, रामचंद्र, नरसिंह देव, वामन देव, ये अलग अलग जो स्वरूप होते हैं भगवान श्री कृष्ण के विष्णु स्वरूप या नारायण स्वरूप होते हैं। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान है, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम, कि भगवान श्री कृष्ण अद्वितीय है, अच्युत है, उनका पतन कभी नहीं होता है, और उनके अनंत रूप है, और इन अनंत रूपों में से ये सारे अवतार हैं वो भी गिने जाते हैं। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन, ये राम आदि जो भी अवतार हैं, विष्णु स्वरूप इत्यादि हैं, ये सब भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, या इनको इनके अंशों के अंश हैं, जिनको कला कहते हैं। तो भगवान के अनगिनत रूप हैं भगवान के धाम में भी, और ये अनगिनत रूप इनके शाश्वत अस्तित्व होता है। और ये जो अलग अलग रूप हैं भगवान के, ये बीच बीच में यहाँ पर संसार में भौतिक जगत में प्रकट होते हैं, और इनको हम अवतार कहते हैं। अवतार मतलब नीचे आ जाना। जब ये भगवान के शाश्वत रूप बीच बीच में यहाँ प्रकट हो जाते हैं, उतर जाते हैं भौतिक ब्रह्मांड में, तो उनको अवतार कहा जाता है। तो भगवान के अलग अलग जो रूप होते हैं, इनके अलग अलग भक्त होते हैं, और अलग अलग भक्तों के पसंद के अनुसार भगवान ने अलग अलग रूप धारण किए हैं, क्योंकि अलग अलग तरह के रूपों में अलग अलग तरह के रस का आस्वादन किया जा सकता है। जो रस का आस्वादन लक्ष्मी देवी नारायण की सेवा करने में करती हैं, प्रहलाद महाराज वो रस का आस्वादन नहीं करते, उनको थोड़ा अलग रस मिलता है, थोड़ा अलग आनंद मिलता है उनको। जो रस पांडवों को कृष्ण की सेवा करने में मिलता था, वो शायद कुंती देवी को अलग प्रकार का रस मिलता था कृष्ण की सेवा करने में। तो इस प्रकार से अलग अलग जो रूप भगवान के होते हैं, उनमें भी अलग अलग तरह का रस होता है, और अलग अलग रस के अनुसार भक्त भगवान को अलग अलग रूपों में पूजित कर पूजा करने की इच्छा रखते हैं, इसलिए भगवान अलग अलग स्वरूप धारण करते हैं। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि अगर भगवान एक हैं, तो अलग अलग रूप क्यों धारण करते हैं? इसलिए क्योंकि भगवान के भक्तों का जो इच्छा होती है उनको अलग अलग रूपों में, अलग अलग रसों में, अलग अलग भावनाओं में पूजा करने की, इसलिए भगवान अपने भक्तों की इच्छा को स्वीकार करके अपने आप को अलग अलग रूपों में प्रकट करते हैं। तो इसलिए प्रभु रामचंद्र जी का रूप भगवान ने स्वीकार किया है, क्योंकि उनके कई भक्त हैं जो उनको इस रूप में पूजा करना चाहते हैं। तो हनुमान जी चाहते हैं भगवान को इस रूप में सेवा करने के लिए। हनुमान जी जानते हैं कि राम में और नारायण में कोई अंतर नहीं है, कि सीता देवी में और लक्ष्मण और लक्ष्मी देवी में कोई अंतर नहीं है, कि लक्ष्मी नारायण उनके आराध्य देव हैं जितना कि सीताराम है, लेकिन फिर भी जो आकर्षण हनुमान जी के हृदय में सीताराम के प्रति होता है वो लक्ष्मी नारायण के प्रति उतना नहीं होता है, राधा कृष्ण के प्रति भी नहीं होता है। ये स्वाभाविक है, क्योंकि हर एक भक्त के हृदय में जो कि शुद्ध भक्ति या प्रेम के अवस्था में पहुंच गया है उसको एक भगवान के अमुक रूप के प्रति ज्यादा आकर्षण रहता है, और ये आकर्षण भी उसके आत्मा के लिए स्वाभाविक होता है, इसलिए उस आकर्षण को वो त्याग नहीं सकता है। उस आकर्षण के बल पर वो भगवान के उसी रूप की सेवा करता है, और हालांकि दूसरे रूपों को भी नमन करता है, उनको उनकी वंदना करता है, सम्मान देता है, लेकिन उनके शरण नहीं जा सकता, उनके प्रति वो प्रेम की भावना नहीं होती जितना कि उसके आराध्य देवों के प्रति होता है। रामायण में भी हनुमान जी कहते हैं कि मैं जानता हूं कि नारायण ही वो राम है, लेकिन फिर भी चतुर्भुज नारायण के प्रति मेरे हृदय में उतनी भावना नहीं होती जितना कि श्री राम के प्रति। तो इस प्रकार से हर एक जीव के हृदय में भगवान के एक अमुक रूप के प्रति एक आकर्षण है, शुद्ध प्रेम है। इस वक्त जबकि हमारी भक्ति विकसित नहीं हुई है, हम अभी तक केवल वैधिक भक्ति के स्तर में हैं, हम नहीं जानते हैं कि शुद्ध भक्ति की अवस्था में हमारा आकर्षण भगवान के कौन से रूप से होगा, इसलिए हमें चाहिए कि हम सभी भगवान के रूपों को जाने, उनकी सेवा करें, उनकी भक्ति करें। और साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि मूल रूप कृष्ण का है, वृंदावन वाले कृष्ण का है, और हनुमान जी भी जानते हैं कि मूल रूप वृंदावन के कृष्ण का है, लेकिन फिर भी जाएंगे सीधे रामचंद्र के पास। ये है भक्ति। वैसे भक्ति के स्तर में देखा जाए तो भगवान के अलग अलग रूपों के जो भक्त होते हैं वो सब एक समान है, लेकिन फिर भी बाहरी दृष्टि से देखा जाए तो रूप गोस्वामी बात समझाते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में कि जो कृष्ण के भक्त हैं वो सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं, और कृष्ण के भक्तों में से भी जो वृंदावन के कृष्ण के भक्त हैं वो सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं, और वृंदावन के कृष्ण के भक्तों के बीच में भी जो गोपियां हैं जो माधुरी रस में कृष्ण की सेवा करती है वो सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। तो ये है अचिंत भेदाभेद भक्तों के बीच में, एक भी है लेकिन फिर भी उनमें श्रेणियां भी हैं। तो इस प्रकार से हनुमान जी श्री राम की सेवा इस भावना से करते हैं और उनका मन श्री राम से हटा नहीं सकते हैं। यही हनुमान जी चैतन्य महाप्रभु के लीला में भी आए थे, जैसे कि कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में आए, तो जो भी वृंदावन में उनके कृष्ण लीला में अलग अलग भक्त थे वो भी भगवान के लीला का आस्वादन चैतन्य महाप्रभु के रूप में करने के इच्छुक थे, इसलिए वो सब भी चैतन्य लीला में प्रकट हुए, सारे भक्त जो आए। तो इस प्रकार से इनमें से अयोध्या लीला में भी हनुमान ने सोचा हम क्यों पीछे रह जाएं, जब हमारे राम भी इसी रूप में आए हैं, राम के ही उगम स्थान ये है चैतन्य महाप्रभु, तो हम भी इस रस का आस्वादन करने के लिए भी आएंगे। तो हनुमान जी आए वहां किसके रूप में? मुरारी गुप्ता, मुरारी गुप्त के रूप में। अभी जब गौर पूर्णिमा के समय गौर लीला का वर्णन हो रहा था और निमाय पंडित के पाठशाला और विद्यालय की लीलाओं का वर्णन हो रहा था तो मुरारी गुप्त का वर्णन हुआ था, आपको स्मरण होगा। मुरारी गुप्ता सालों में थोड़े बड़े थे चैतन्य महाप्रभु से, निमाय पंडित से, और बड़े विद्वान भी थे, और निमाय पंडित उनको हमेशा टोका करते थे अरे तुम तो वैद्यों के परिवार से आए हो, तुम वैद्य हो, तो तुम जाके तुम कफ पित्त वायु का ठीक ठाक करो, अजीर्ण जो होता है, अपचन होता है, उसका तुम जाके तुम उसके बारे में देखो, यह व्याकरण इत्यादि तुम्हारे बस की बात नहीं है। ऐसे हमेशा टोकते थे और उनको ललकारते थे तर्क वितर्क के लिए। और मुरारी गुप्ता कभी कभी ऐसे सुंदर तर्क प्रस्तुत करते थे, लेकिन निमाय पंडित हरा देते थे उनको और कहते थे कि ठीक है जाओ, अच्छी तरह से किताब पढ़ो और फिर कल आ जाओ, फिर से और चर्चा करेंगे। क्योंकि निमाय पंडित तो थे साक्षात श्री कृष्ण, तो श्री कृष्ण से ज्यादा विद्वान कौन हो सकता है। तो इस प्रकार से मुरारी गुप्ता, वही मुरारी गुप्ता जो आगे चल के चैतन्य महाप्रभु की लीला में बहुत निकट के पार्षद बने और वो हनुमान थे। तो एक बार चैतन्य अपने सारे भक्तों का गुणगान कर रहे थे, एक एक को पकड़ पकड़ के उनका गुणगान करते थे सारे भक्तों के सामने। तो मुरारी गुप्ता की बारी जब आई तो उन्होंने कहा, देखो ये मुरारी गुप्ता इतने शुद्ध भक्त हैं भगवान के, ये तो मेरे प्राण धन है, मुरारी गुप्ता के बिना तो मैं रह ही नहीं सकता। एक बार ऐसे हुआ कि मैंने मुरारी गुप्त से कहा कि हे मुरारी, देखो कृष्ण को समझने का प्रयास करो, तुम केवल रघुनाथ के शरण में गए हो, केवल प्रभु रामचंद्र जी की सेवा करते हो, लेकिन कृष्ण कौन है जरा समझ के देखो। कृष्ण सारे रसों के भंडार है, कृष्ण सारे आकर्षक गुणों के स्रोत हैं, कृष्ण जैसा कोई भी आकर्षक व्यक्ति नहीं है, रसराज है वो, सारे उत्कृष्ट रसों का आस्वादन करते हैं, आदान प्रदान करते हैं अपने भक्तों के संग में, ऐसे रस जो कि भगवान का कोई भी रूप प्रकट नहीं करता है। तो इस प्रकार से कृष्ण ही सारे रूपों के उगम स्थान है, कृष्ण ही सब कुछ है, सबसे मधुर जो प्रेम है वो कृष्ण के प्रति हो सकता है, रघुनाथ के प्रति नहीं, नरसिंह देव के प्रति नहीं, इसलिए ये रूप बड़ा विशिष्ट है रघुनाथ। इस प्रकार से बार बार प्रचार करने के बाद थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ मुरारी गुप्ता के हृदय में। उन्होंने कहा, ठीक है आप जब आदेश देते हैं तो आज से मैं कृष्ण की सेवा शुरू कर देता हूँ। लेकिन रात को जब गए रघुनाथ, ये चैतन्य महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं दूसरे भक्तों को मुरारी गुप्ता के बारे में, तो कहने लगे, जब मुरारी गुप्ता वापस गए अपने घर में, वो रात भर सो नहीं पाए, रात भर रोते रहे, क्यों रोते रहे, रघुनाथ जी से प्रार्थना कर रहे कि हे रघुनाथ, हे श्री रामचंद्र, देखिए मैं क्या करूं, मैं आपके चरण कमलों को छोड़ नहीं सकता, मैंने एक बार व्रत किया है कि आपकी सेवा करते रहूंगा और इतना आनंद आता है मुझे आपकी सेवा। चैतन्य महाप्रभु कोई उपयुक्त लीला करते थे अपने भक्तों के संग में, जैसे जन्माष्टमी के दिन वो कृष्ण लीला अपने भक्तों के साथ में करते, जैसे हम लोग यहाँ मंदिर में नाटक करते हैं, गौर लीला के समय चैतन्य महाप्रभु की कोई लीला, रामलीला रामनवमी के समय कोई रामलीला, तो चैतन्य महाप्रभु उस प्रकार से करते थे। तो विजयदशमी के दिन चैतन्य महाप्रभु राम के भाव में आ गए, राम आवेश में, और उन्होंने एक झाड़ की शाखा को तोड़ दिया और उसे एक झाड़ समझकर कहीं लंका की ओर आगे बढ़ने लगे, और कोई एक वहां किला बनाया हुआ था तो किला के ऊपर चढ़ के किले को तोड़ने लगे, कि जैसे मानो प्रभु रामचंद्र हनुमान जी के वेश में आकर, हनुमान जी के भाव में आकर लंका को चढ़ के तोड़ने लगे और जोर जोर से चिल्लाने लगे, कहां है वो दुष्ट रावण, अभी उसे खत्म कर देता हूं, उसकी ये साहस हुई कि उसने विश्व माता सीता देवी का अपहरण किया है, मारो उस रावण को, खत्म कर दो लंका को। तो भावावेश में आकर जोर जोर से ऐसे बोल के सब तोड़ रहे थे उस किले को, और इस महाप्रभु के इस भावावेश में आने के बाद में सारे भक्त जो वहां उपस्थित थे वो बार बार लंबे समय तक जय जयकार करने लगे, जय हो करने लगे। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु भी राम की लीला, हनुमान जी की लीला को करते रहे। वैसे श्री राम और हनुमान जी खास करके चैतन्य लीला में तो आए, लेकिन कृष्ण लीला में भी आए। द्वारका में श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि घरों में अलग अलग प्रकार के जो भी अलंकार और वस्तुएं होते थे, शुभ वस्तुएं जो सजावट के लिए इस्तेमाल की जाती थी, उनमें से झंडे भी हुआ करते थे। हर एक घर में नाना प्रकार के शुभ पेड़ों के पत्ते वगैरह लगाए जाते थे, जैसे आम के, अश्वत्थ वृक्ष के, पीपल के इत्यादि। साथ साथ में झंडों के ऊपर गरुड़ जी और हनुमान जी, इनका चित्र भी रहा करता था। तो द्वारका में भी हनुमान को बहुत मानते थे लोग, हनुमान जी की उपासना करते थे। और अर्जुन जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में थे तो अर्जुन के रथ पर एक झंडा था, उस झंडे के ऊपर भी किसका चित्र था? हनुमान जी का। इसलिए अर्जुन का और एक नाम है कपिध्वज। कपि मतलब बंदर, बंदर मतलब यहाँ पर हनुमान को संबोधित करता है, ध्वज मतलब झंडा। तो जिनके झंडे के ऊपर हनुमान जी हैं, वो है कपिध्वज। तो इस प्रकार से अर्जुन चाहते थे कि हनुमान जी मेरे साथ में रहे, क्योंकि हनुमान जी शुद्ध भक्त हैं, उनका बल अतुलनीय है। हनुमान जितनी शक्ति किसकी है? किसी की भी नहीं है। तो इसलिए अर्जुन ने अपने रथ के ऊपर हनुमान जी को रखा। और कृष्ण कौन है? वही राम है। तो अर्जुन ने, अर्जुन को मालूम था कि जहां मेरे साथ कृष्ण है, हनुमान है और राम है, तो और मुझे किस चीज का डर है? क्योंकि जहां हनुमान है और राम है, वहां विजय निश्चित है। यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर ममा। आखिरी श्लोक श्रीमद भगवत गीता का भगवान श्री कृष्ण संजय बताते हैं कि जहां धनुर्धारी अर्जुन है, जहां योगेश्वर कृष्ण है, वहां हर प्रकार की नैतिकता, विजय, ऐश्वर्य, तेज, वहां सब कुछ आ जाएगा खुद ब खुद। तो इसी प्रकार से हनुमान जी के वहां उपस्थित रहने की वजह से अर्जुन के लिए जीत निश्चित था। तो इस प्रकार से अनादिकाल से हम देखते हैं कि हनुमान जी की उपासना होती है, हनुमान जी का गुणगान होता है। यहां तक कि प्रहलाद जी ने भी हनुमान जी का गुणगान किया है। आप सोचेंगे कि ये कैसे हो सकता है कि हनुमान जी तो राम जी के समय आए, जो कि त्रेता युग में हुआ, और प्रहलाद कब आए? सत्ययुग में, जो कि त्रेता युग के पहले है। तो जब प्रहलाद हनुमान जी के करोड़ों साल पहले आए, तो उन्होंने हनुमान जी का कैसे गुणगान किया? इसका क्या कारण हो सकता है? कोई बता सकते हैं? ये लीलाएं चलती रहती हैं, ये पूर्व कल्प की बात है, क्योंकि ब्रह्मा जी के एक दिवस में 14 मन्वंतर होते हैं, और इस एक दिवस में कितने सारे, हर एक बार एक अवतार भगवान के आते हैं। तो प्रभु रामचंद्र भी हर एक ब्रह्मा जी के दिवस में एक बार आते हैं, हर एक मन्वंतर में नहीं आते हैं, वो एक बार। तो प्रभु रामचंद्र और हनुमान जी के साथ में ब्रह्मा जी के हर एक दिवस में एक बार आते रहते हैं। तो देखिए कि हनुमान जी पहले भी आ चुके हैं पिछले कल्प में, तो कब से हनुमान जी की कथा प्रचलित है यहाँ पर भौतिक ब्रह्मांड में? प्रवचन के पहले हम चर्चा कर रहे थे कि भक्त का यश जो होता है सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि अनादि काल से भी भक्तों का गुणगान चलते आ रहा है। तो हनुमान जी का गुणगान न तो केवल इस मन्वंतर के त्रेता युग से चल रहा है, बल्कि अनादि काल से, क्योंकि अनादि काल से कितने कल्पों से, हर एक कल्प में श्री राम अवतार लिए हैं और उनके साथ में हनुमान जी आए हैं। देखिए हनुमान जी का गौरव, प्रहलाद जी का गुणगान, ये है शीर्ष पंचरात्र इस शास्त्र में आता है, जिसमें यह बताया जाता है कि जब नरसिंह देव प्रहलाद के सामने प्रकट हुए तो उन्होंने प्रहलाद से पूछा कि अरे प्रहलाद, मैं तुम्हारे ऊपर बड़ा प्रसन्न हूं, बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, क्या वरदान चाहिए? तो प्रहलाद ने कहा कि मैं आपका दास बना रहूं, आपकी सेवा का अवसर मुझे मिलता रहे, यही मेरी एकमात्र प्रार्थना है, मुझे और कोई भी वरदान नहीं चाहिए। और उन्होंने उस समय हनुमान की प्रार्थना की, उन्होंने दया कहा कि प्रभु, जैसे कि हनुमान जी ने प्रार्थना की है आपसे, वैसे ही मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं। हनुमान जी ने क्या प्रार्थना की थी? उन्होंने कहा था कि हे प्रभु, मैं मुक्ति नहीं चाहता हूं, मैं आपके निराकार ब्रह्म स्वरूप में लीन होना नहीं चाहता हूं। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से मेरे हृदय में आपके प्रति जो दास्य भावना है, जो सेवा करने की भावना है, वो नष्ट हो जाएगी। इसलिए जो भी वस्तु मेरे आपकी सेवा करने में, इस दास्य रूप में सेवा करने में एक बंधन खड़ा हो जाता है, उसको मैं त्यागना चाहता हूं। तो हनुमान जी ने सोचा कि मुक्ति प्राप्त करने से भी ये भी एक प्रकार की रुकावट हो जाएगी उनकी श्री राम की सेवा करने में, इसलिए उन्होंने मुक्ति को भी त्याग दिया। क्योंकि जब हम भगवान के निराकार स्वरूप में लीन हो जाते हैं तो फिर हम भगवान के समान बनने का सोचते हैं, और ऐसे अवस्था में भगवान की सेवा नहीं की जाती है। इसलिए निराकार ब्रह्म में जो जीव हैं, जो निराकार में लीन हुए हैं, वो भगवान की सेवा नहीं कर सकते। सेवा की भावना विकसित नहीं हो सकती निराकार ब्रह्म में, उसके लिए वैकुंठ लोकों के ऊपर जाना पड़ता है। जब जीव का अस्तित्व भिन्न रहता है उसी समय वो भगवान की सेवा कर सकता है। तो हनुमान जी ने कहा कि मुक्ति भी नहीं चाहिए, निराकार में लीन होना भी नहीं चाहता हूं। हनुमान जी को क्या चाहिए था? केवल आपकी अहितु की सेवा मेरे पास बनी रहे। तो ये है हनुमान जी का चरित्र। इतने शुद्ध भक्त कि प्रहलाद जैसे शुद्ध भक्त भी उनका गुणगान कर रहे थे, और प्रहलाद भी कह रहे थे कि मुझे भी हनुमान जी जैसे बनना है, हनुमान जी जैसे शुद्ध भक्त मुझे बनना है। इसका मतलब है कि हनुमान जी की भक्ति में बिल्कुल कोई भौतिक मिलावट नहीं है, बिल्कुल शुद्ध भक्ति के प्रतीक हनुमान जी है। इस प्रकार से ऐसे शुद्धता से, ऐसे भक्ति से भगवान का हृदय भक्त जीत लेते हैं, और भगवान अपने भक्तों के प्रति इतना ऋणी हो जाते हैं कि इस ऋण के कारण वो अपने भक्तों को अपने आप से ज्यादा शक्तिशाली बनाते हैं। ये है शक्ति, और अपने भक्तों के अधीन हो जाते हैं। जब दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश महाराज के प्रति अपराध किया तो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया, बल्कि सुदर्शन चक्र खुद भगवान के उंगली से निकलकर दुर्वासा मुनि का पीछा करने लगे, और दुर्वासा मुनि इस सुदर्शन चक्र से राहत प्राप्त करने के लिए, छुटकारा प्राप्त करने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, ब्रह्मांड भर में भागे, शिव जी के पास, ब्रह्मा जी के पास, देवी देवताओं के पास, पहाड़ में, सागर में, सब जगह देवताओं के पास भी गए, लेकिन सभी ने कहा कि हम आपकी सहायता नहीं कर सकते। आखिर में वो स्वयं विष्णु के पास गए, भगवान के पास गए कि आप, सुदर्शन चक्र आपका है, आप कृपा करके सुदर्शन चक्र को मेरे पीठ से हटाइए, मैं आपके शरण में जाता हूं। तो उस समय नारायण ने, विष्णु ने क्या कहा? नारायण ने कहा कि मैं भी, ये मेरे हाथ में भी नहीं है, ये मेरे भी बस के बाहर है, क्योंकि आपने मेरे भक्त का अपराध किया है, और मेरा भक्त जो होता है वो मुझसे शक्तिशाली होता है, तो जो शक्ति मेरे भक्त में है वो मेरे में नहीं है। तो आपको क्षमा करने की शक्ति या आपके पीछे जो सुदर्शन चक्र चल रहा है उसको हटाने की शक्ति मुझ में नहीं है, केवल मेरे भक्त में है, इसलिए आप अम्बरीश महाराज के पास में जाओ, अम्बरीश महाराज के शरण में जाओ, क्षमा याचना करना, अगर अम्बरीश महाराज आपके ऊपर प्रसन्न हुए तो सुदर्शन चक्र आपसे हट सकता है। तो दुर्वासा मुनि भागकर अम्बरीश महाराज के पास में आए, उनके शरण में आए। अम्बरीश महाराज बड़े शर्मिंदा हुए, क्योंकि भक्त स्वाभाविक बहुत नम्र रहता है, उन्होंने तुरंत क्षमा कर दिया, और तब सुदर्शन चक्र शांत हो गया और फिर से विष्णु के उंगली में लौटकर चले गए। तो इससे ये सिद्ध होता है कि भगवान ऋणी होकर अपने भक्त को अपने से ज्यादा शक्तिशाली बना देते हैं। और इसका और एक उदाहरण है हनुमान जी। श्री राम ने हनुमान जी को अपने आप से ज्यादा शक्तिशाली बनाया। वैसे तो श्री राम से शक्तिशाली कौन हो सकता है, क्योंकि वो भगवान है, लेकिन फिर भी जब भगवान अपने लीला को प्रकट करते हैं तो अपने लीला में वो ऐसे दिखाते हैं कि भक्त ही उनसे ज्यादा शक्तिशाली है। खानापुर में भी हम ये थोड़ी बहुत इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि ये एक सोचने लायक बात है कि प्रभु रामचंद्र ने जब सागर पार किया तो उनको पुल की आवश्यकता पड़ी, पुल बनवाया ना उन्होंने, हालांकि कोई अद्भुत पुल बनवाया, पत्थर तैर रहे थे पानी के ऊपर, ये बड़ी विचित्र बात है, ये ठीक है, लेकिन फिर भी उनको पुल बनाने की आवश्यकता तो पड़ी। हालांकि भगवान को ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्यों भी वो मनुष्य लीला कर रहे थे इसलिए उनको ये आवश्यकता पड़ी कि एक पुल बन जाए। पुल बनाने के बाद में फिर वो पुल के ऊपर चले और आखिर में लंका पहुंचे। तो जब राम को, जो कि स्वयं भगवान है, लंका को पहुंचने के लिए एक पुल की आवश्यकता पड़ी, लेकिन उनके भक्त हनुमान उनसे ज्यादा इतने शक्तिशाली थे कि हनुमान को वो रास्ते की आवश्यकता नहीं पड़ी। हनुमान ने क्या किया, छलांग लगा दिया, पट करके पहुंच गए, महेंद्र पर्वत से कूद दिए और पहुंच गए लंका। इसका मतलब क्या है कि भक्त को भी, भक्त वो चीज कर पाए जो स्वयं भगवान नहीं कर पाए। रामचंद्र कूद कर नहीं गए, छलांग मारकर उड़कर नहीं गए लंका, लेकिन हनुमान उड़कर गए। इसका मतलब है, प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भक्त ही भगवान से ज्यादा शक्तिशाली होते हैं और भगवान ही अपने भक्त को ऐसी शक्ति प्रदान करते हैं। लेकिन हनुमान जैसे जो भक्त होते हैं, शुद्ध भक्ति की वजह से वो नम्र होते हैं और कभी भी अपनी शक्ति का उनको गर्व या अभिमान नहीं होता। हर स्थिति में वो जानते हैं कि जो भी मेरे में क्षमता है, योग्यता है, पात्रता है, शक्ति है, वो केवल भगवान की कृपा है। भगवान ने मेरे ऊपर कृपा की, इसलिए शक्ति मुझ में है, नहीं तो मेरे कहने लायक कोई शक्ति नहीं है, कोई पात्रता योग्यता नहीं है, ये शक्ति केवल भगवान की ही है। इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि भक्त को कभी घमंड नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार के अगर कोई व्यक्ति जो बहुत गरीब है और उसने बहुत जगह से उधार लिया, इधर से 1 लाख, उधर से 10 लाख, इधर से 5 लाख, इधर से 15 लाख, और फिर उसके पास इतने सारे करोड़ों रुपए हो गए सब उधार का, तो क्या उसको घमंडी होने, गर्व होने का अधिकार है? देखो मैं कितना अमीर हूं। तो उधारी के पैसे पर जो अमीर होता है उसमें कोई गर्व होने की बात नहीं है, है क्या? जो अपने कमाई से, अपने शक्ति से जो मिलता है धन, उससे भी नहीं होना चाहिए, लेकिन कम से कम हो भी जाए तो ठीक है, कह तो सकते हैं कि भाई इसने अपने कमाई पे किया है, उधार का माल तो नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार से जो भी हमारे पास है, जिसकी वजह से हमें संसार में थोड़ा कुछ भी क्यों ना मिला हो, थोड़ा कुछ यश, थोड़ी बहुत प्रसिद्धि, थोड़ा बहुत धन, गाड़ी, बंगला, थोड़ा समाज में नाम, इज्जत, ये सारी चीजें भगवान ने दी हुई शक्ति की वजह से है, भगवान की कृपा की वजह से है। तो ये भी हमने सब, जो भी शक्ति है, बुद्धि है, योग्यता है, हमने उधार लिया है भगवान से, भगवान ने हमें उधार दिया है, और उस उधार लिए हुए चीज को लौटाने के बजाय, अर्थात उनकी सेवा में लगाने के बजाय, हम ब्याज भी लौटाने का सोचते नहीं है, अर्थात धन्यवाद भी देने का सोचते नहीं भगवान को कि आपकी कृपा से हमें प्राप्त हुआ। तो फिर ये जो चीजें हैं उनकी सेवा में उपयोग करने की बात तो दूर रही। तो हनुमान जी क्या करते हैं? हनुमान जी भगवान ने दी हुई शक्ति केवल भगवान की सेवा में ही प्रयोग करते हैं, कभी भी अपने स्वार्थ के लिए नहीं करते हैं। ये हनुमान जी की खूबी है। उनके हृदय में तनक भी कोई भौतिक कल्मश नहीं है, भौतिक इच्छा नहीं है। हर अवस्था में उन्होंने कितनी निस्वार्थ ढंग से श्री राम की सेवा की है। अगर हनुमान चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे अपने इंद्र तृप्ति के लिए, लेकिन नहीं किया, इसलिए श्री राम उनको इतना प्रेम करते थे। जब हनुमान जी पहली बार लंका उड़कर गए छलांग मारकर, तो उन्होंने सीता देवी का दर्शन किया और फिर सीता देवी को बहुत शांत कराया, सांत्वना दी उनको और कहा कि श्री राम बहुत ही जल्दी आएंगे, आपको लेकर वापस जाएंगे वो। सीता देवी को पहले संशय हुआ, लेकिन बाद में जब हनुमान जी ने राम जी की अंगूठी उनको दी, और जब हनुमान जी ने अपना विराट रूप, एक बहुत बड़ा रूप स्वीकार ग्रहण किया, तो सीता देवी को पता चला कि ठीक है, ये हनुमान है, श्री राम के ही अधिकृत प्रतिनिधि है। तो उस समय सीता देवी और हनुमान जी के बीच लंबी बातचीत हुई, और फिर आगे चल के हनुमान ने सोचा कि ठीक है, मैं ही सीता देवी को ले जा सकता हूं। तो सीता देवी ने कहा कि अरे तुम क्या ले जाओगे, इतने छोटे हो। तो हनुमान जी ने कहा, अरे हनुमान जी को बुरा लगा कि मुझे छोटी समझती है, तो बड़ा रूप धारण कर दिया। तो इतना बड़ा रूप हो गया तो सीता देवी ने कहा, ठीक है ठीक है, अभी मैं कन्विंस हो गई हूँ कि तुम इतने शक्तिशाली हो। उसे मंदा, लेकिन हनुमान जी के उस घमंड में एक प्रकार की मासूमता थी जैसे बच्चे को होता है, उसमें हमारे जैसे घमंड नहीं था कि अरे ये क्या सोचता है मेरे बारे में। हम जब ऐसा घमंड करते हैं तो उस घमंड में और हनुमान जी के बुरे लगने में बहुत अंतर है। एक तरह की शुद्धता, एक तरह की मासूमियत थी उसमें हनुमान जी के घमंड होने में, हनुमान जी को बुरा लगने में। तो हनुमान जी ने कहा कि आज कभी कभी मैं आपको लेकर जा सकता हूँ। तो सीता देवी ने कहा कि ठीक है, आप उड़कर ले जाओगे मुझे, लेकिन आप इतने तेजी से समुद्र के ऊपर उड़ पाओगे तो इतना तेज हवा आएगी कि मैं तो गिर ही जाऊंगी पानी में, वो गति में आपको पकड़ के मैं रह नहीं पाऊंगी और नीचे गिर जाऊंगी, वहां मगरमच्छ ये वो नाना प्रकार के जहरीले सब प्राणी रहेंगे पानी में, मुझे खा डालेंगे। और वैसे भी जब आप मुझे लेकर जाओगे तो सारे राक्षस आपके पीछे आएंगे, आप पर आक्रमण करेंगे, तो आप उनके साथ आक्रमण करोगे तो मैं भी घायल हो जाऊंगी, और साथ साथ में आप उनको उनके साथ में युद्ध करोगे या मेरी रक्षा करोगे, क्या करोगे, इसलिए संभव नहीं है। और वैसे भी अगर आप मुझे यहां से ले गए तो राम का गौरव कैसे होगा, राम का गुणगान कैसे होगा, मैं चाहती हूं कि राम का गुणगान हो, इसलिए स्वयं राम को यहां आना चाहिए, मुझे ले जाना चाहिए। और वैसे मैं और किसी पुरुष का स्पर्श नहीं कर सकती बिना कि मेरे पति के, एक बार तो हो ही चुका है, रावण तो जबरदस्ती ले गया, लेकिन मेरे स्वयं की इच्छा से मैं और किसी पुरुष का स्पर्श नहीं कर सकती। हालांकि तुम्हारी इतनी शुद्ध भावना है, फिर भी श्री राम को ही आकर मुझे ले जाना पड़ेगा। उसके बाद में हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी ने बात को माना, कहा बहुत ही जल्द श्री राम आएंगे। और हनुमान ने सोचा कि अभी यहाँ थोड़ा कुछ मजा कर ले, इतने दूर आए हैं, थोड़ा कुछ उत्तेजना कुछ होना चाहिए, कुछ एक्शन होना चाहिए, या आकर चले गए। तो उन्होंने सोचा कि राक्षसों की शक्ति की परीक्षा ली जाए, ये राक्षस लोग कितने शक्तिशाली हैं, थोड़ा बहुत उनको डर भी उनके हृदय में पैदा करा दें और देख लें कि यहाँ क्या क्या चल रहा है। तो हनुमान जी फिर सारे लंका में घूमे, सब कुछ देखा उन्होंने कि कहाँ क्या चल रहा है, राक्षसों के घरों में क्या चल रहा है, राक्षसों की सेना कितनी बड़ी है, उनके कौन से अस्त्र शस्त्र हैं इत्यादि। और इस प्रकार से हनुमान जी ने अपना काम आरंभ किया। ये बड़े बड़े गाड़ियां, ये भी आधुनिक जमाने के राक्षस। तो हनुमान जी ने पहले सारे अशोक वाटिका को नष्ट कर दिया, सारे झाड़ पेड़ उखाड़ के इधर उधर कर दिए, सुंदर बगीचा था। और जब बात फैल गई कि एक बंदर आकर ये सब कर रहा है, तो बात रावण तक पहुंच गई। सारी सेना के सेनापतियों को, सैनिकों को भेजा, उनके पुत्र को भेजा अक्ष, अक्ष को भी मार दिया हनुमान ने, सारे लंका में तहस नहस कर दिया। और आखिर में इंद्रजीत आया, इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया हनुमान के ऊपर, हनुमान को ब्रह्मास्त्र से लपेटकर बंदी कर दिया। लेकिन हनुमान जी को एक वरदान मिला था ब्रह्मा जी से, जिसके बारे में आज शाम को चर्चा करेंगे। और ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि मेरे नाम का जो अस्त्र है आपके ऊपर काम नहीं करेगा, ये मैं वरदान देता हूँ, क्योंकि ब्रह्मास्त्र जो होता है सबसे शक्तिशाली अस्त्र होता है। तो इंद्रजीत ने हनुमान के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया, क्योंकि और कोई भी अस्त्र काम नहीं कर रहे थे, हनुमान जी तो केवल इधर उधर सत्यानाश कर रहे थे सब कुछ। तो उस समय जैसे ही इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया, हनुमान बंध तो गए, लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार बहुत जल्दी उसका असर छूटना था। लेकिन उसके पहले ही अन्य राक्षस भी आए, उन्होंने रस्सी से हनुमान को बांध दिया। तो ब्रह्मास्त्र के बारे में ऐसा बताया जाता है कि अगर ब्रह्मास्त्र को जब छोड़ा जाता है और वो व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है, तो और कोई अस्त्र से या किसी वजह से उसको बंदी लिया जाए तो ब्रह्मास्त्र का असर खत्म हो जाएगा। तो उस समय ब्रह्मा जी के वरदान से भी और ब्रह्मास्त्र के चलाने के ऊपर जो नियम होता है उसकी वजह से भी हनुमान जी ब्रह्मास्त्र के असर से छूट गए। लेकिन ऐसे ही नाटक कर रहे थे कि वो बंदी हैं। इंद्रजीत बड़े तेज बुद्धि के थे, इंद्रजीत को पता चल गया कि ये बंदी होने का ढोंग कर रहा है, नाटक कर रहा है। और सोचने लगा इंद्रजीत कि ये तो राक्षस बड़े मूर्ख है मेरे, इन्होंने क्यों बांधना चाहिए था उसको, ब्रह्मास्त्र का असर चला गया। क्योंकि इंद्रजीत को उस समय ये नहीं मालूम था कि ब्रह्मा जी का वरदान भी
हनुमान को मिला था। तो खैर हनुमान जी को और दंगा करना था, इसलिए हनुमान जी ने नाटक किया। तो इंद्रजीत मनी मन में थोड़ा सोच रहे थे कि ये इतना नाटक कर रहा है, इतना भयभीत नहीं हो रहा बिल्कुल, इसका मतलब है कि इसकी शक्ति और बहुत है, फिर भी देख लेते हैं आगे क्या होगा। तो हनुमान जी को लाया गया दरबार में। रावण ने हत्या करने की सोच ली, लेकिन विभीषण ने आया कहने लगा नहीं, जो दूत होते हैं, दूत रूप में आते हैं, भले वो है दंगा भी करते हो, लेकिन उनको जान से नहीं मार डालना चाहिए, उनको दंड दे देना चाहिए केवल। तो रावण ने कहा ठीक है, तो क्या दंड दिया जाए? तो उनको, उनके जो पूंछ है, पूंछ के बारे में बहुत घमंड होता है बंदरों को, तो पूंछ को जला दिया जाए और बंदर को छोड़ दिया जाए। तो हनुमान जी के पूंछ में कपड़ा जो कि तेल में लगा हुआ डुबा हुआ था, उसको आग लगा दिया और हनुमान को भी प्रदर्शन में ले जाया गया सब जगह। और लंका के सारे लोग बाहर आकर देखने लगे, ये कौन है, ये बंदी, नया बंदी बंदर है जिसने सारा तहस नहस कर दिया है। तो हनुमान ने सोचा कि ये ठीक नहीं है, मैं श्री राम का प्रतिनिधि हूँ, अगर लोग मेरा हंसी मजाक उड़ाएंगे इसका मतलब है कि राम का हंसी मजाक उड़ाएंगे, इसने मुझे अब कुछ करके दिखाना है। और उस समय हनुमान ने सोचा ये तो आश्चर्य की बात है, मेरे पूंछ को जला दिया है इन्होंने, लेकिन मुझे ऐसे ठंडा लग रहा है जैसे को किसी ने बर्फ रखा हो राक्षसों ने मेरे पूंछ के ऊपर, ठंडा क्यों लग रहा है? तो वास्तव में इसका कारण ये था कि सीता देवी तक खबर पहुंच गई थी कि हनुमान के साथ में ऐसा किया जा रहा है। तो सीता देवी ने अग्नि देवी से प्रार्थना की कि हे अग्निदेव, अगर आज तक मैंने कोई भी पुण्य किए हो, कोई भी तपस्या की हो, कोई भी धार्मिकता का पालन किया हो, तो कृपा करके हनुमान जी को आपके अग्नि से बचाइए और ऐसा प्रतीत होने दे कि कोई ठंडी हवा चल रही है। तो वायुदेव, वो भी हनुमान जी के पुत्र हैं, तो उन्होंने भी ठंडी हवा बहाना चालू कर दिया और हनुमान जी को लग रहा था कि बर्फ रख के ये लोग कर रहे हैं, तो बड़े आनंद में थे हनुमान जी। और फिर हनुमान जी ने कहा अब कुछ करना चाहिए। तो हनुमान जी तुरंत उन्होंने अपने रूप को कम कर दिया, बहुत छोटा बना दिया अपने आप को, क्योंकि सारी योग शक्ति है हनुमान में, अपने आप को इतना छोटा बना दिया कि जो कपड़ा उनके पूंछ पे लपेटा हुआ था वो तो निकल आया, बाहर गिर पड़ा। और फिर हनुमान जी अपने पूंछ को अग्नि में लगते हुए भी वो इधर उधर कूद पड़े, फिर अपना रूप विशाल बना दिया और सारे लंका को जला डाला। जो भी हीरे मोते रत्नों से बने हुए बड़े बड़े इमारतें अट्टालिकाएं सबको भस्म कर दिया हनुमान ने, और सारा हाहाकार मच गया सारे लंका में, एक बंदर ने आके इतना सब किया। रावण भी सोच रहा था कि इतना ये बड़ा लंका है जिसमें कोई बड़े बड़े शत्रु देवी देवता नहीं आ सकते, ये बंदर ने आके इतना सब कर दिया, ये क्या है? और फिर आखिर हनुमान ने बाहर आकर फिर से छलांग लगा दी, छलांग लगाकर महेंद्र पर्वत में पास में आए, वहां जो भी वानर सेना एकत्र थी उनको खुशखबर दे दी और बड़े खुशी के भाव में सभी लोग किष्किंधा की ओर फिर से गए जहां श्री राम और सुग्रीव उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जब हनुमान जी ये खबर लेकर आए, श्री राम ने बड़े विस्तार में सुन लिया जो हनुमान को कहना था और फिर श्री राम ने कहा कि हे हनुमान, मैं तुम्हारे ऊपर बड़ा प्रसन्न हूं, तुमने जो आज कार्य करके दिखाया है वो संसार में केवल एक ही और व्यक्ति कर सकता है और वो है गरुड़ जी। तुम्हारी शक्ति गरुड़ देव के बराबर की है, केवल गरुड़ ही ऐसा कोई काम कर सकते थे जो आज तुमने करके दिखाया है। तुम पूरे यहां से वहां उड़ के गए, तुमने सीता देवी को मीठे शब्द कहकर उनकी चिंता को कम कर दिया, उनके मन को शांत कर दिया, उनको आश्वासन दिया कि मैं आ रहा हूं, तुमने सारे लंका को देख लिया कि क्या उनकी सेना कहाँ है, क्या है उनकी शक्ति, क्या है उनकी शक्ति की परीक्षा की उनसे युद्ध करके, और रावण के हृदय में भय उत्पन्न कर दिया, और इतना सब करके तुम आए तो मैं बड़ा प्रसन्न हूं तुम्हारे ऊपर। हे हनुमान, तीन प्रकार के सेवक होते हैं। पहला प्रकार का सेवक वो होता है प्रथम श्रेणी का, जो कि अपने प्रभु के बताए हुए आदेश के अनुसार अच्छे ढंग से काम करता है, लेकिन उससे अधिक भी और कोई काम कर लेता है, जो कि उसके मालिक को प्रभु को चाहिए लेकिन आदेश से भी बढ़कर जो सेवक कर लेता है, जो कि तुमने किया है। मैंने तो केवल सीता को ढूंढ निकालने की बात की थी, लेकिन तुमने और बहुत कुछ मेरे सहायता के लिए कर लिया है, इसलिए तुम प्रथम श्रेणी के सेवक हो। दूसरे श्रेणी के सेवक वो होते हैं जो कि प्रभु के आदेश का पालन तो करते हैं, लेकिन वो योग्यता और शक्ति होने के बावजूद उस आदेश से अधिक और कुछ नहीं करते। जितना बताया है उतना करते हैं और बस उतना ही करते हैं। और तीसरे श्रेणी के जो होते हैं सबसे नीचे, वो ऐसे सेवक होते हैं जो योग्यता होते हुए भी आदेश का पालन नहीं करते। तो तुम प्रथम श्रेणी के हो हनुमान, तो मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं? मैं तुम्हारा इतना ऋणी हूं, मैं तो यह वनवास में आया हूं, मेरे पास कोई धन नहीं, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारा ऋण एक ही तरह से चुका सकता हूं, और वो है तुम्हें आलिंगन करके। तो श्री राम ने हनुमान का आलिंगन कर लिया और सारे वानर सेना में जय जयकार हुआ, जय हो जय हो। तो इस प्रकार श्री राम ने हनुमान जी की सेवा की बख्शीश दी, पुरस्कार दिया। तो ये तीन प्रकार के सेवक है, ये भी हमें भी भक्ति मार्ग में सीखना चाहिए। हमें किस प्रकार का सेवक होना चाहिए? प्रथम श्रेणी का, जो हमसे भगवान और भगवान के प्रतिनिधि अपेक्षा करते हैं। जिस प्रकार की सेवा वो तो हमें करनी चाहिए, लेकिन उसे अधिक हमें करना चाहिए। हमें इस बात से संतुष्ट नहीं होना चाहिए कि केवल जो हमें बताया गया है हम कर रहे हैं, बस इससे अधिक नहीं करेंगे। अगर हम और आएंगे तो ये होगा वो होगा, नहीं, हम केवल अपना काम करेंगे चले जाएंगे। कई भक्त ऐसे परेशान हो जाते तो ऐसा बोलते हैं ना, केवल हम अपना काम करेंगे, मंदिर में आएंगे चले जाएंगे, नहीं। लेकिन वो दूसरे श्रेणी के सेवक होते हैं। पहले श्रेणी का सेवक क्या होता है? जो समझता है अगर मेरी पात्रता है, मेरी शक्ति है, मेरी बुद्धि है, कुछ भी है, तो मुझे जो बताया गया है उससे भी अधिक सेवा मुझे करनी चाहिए, क्योंकि भगवान की भक्ति आखिर कोई सरकारी कार्यालय तो नहीं है, है? नहीं। सरकारी कार्यालय में क्या होता है, जितना बताया जाता वो भी नहीं करते हैं, लेकिन कहां जाए, दूसरे टेबल में कोई काम हो वो मेरा डिपार्टमेंट नहीं, उनको केवल वो फाइल वहां से दूसरे टेबल से उठाकर देखकर बता सकते हैं, लेकिन कहेंगे नहीं हमारा काम इतना है हम इतना ही करेंगे, उतना नहीं, बिल्कुल अपने इसके बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन भक्ति ऐसी बात नहीं है, इसलिए भक्त कभी ऐसे नहीं कहना चाहिए कि ये मेरी सेवा नहीं है मैं क्यों करूं। अभी मैंने मंदिर में कागज का टुकड़ा देखा, लेकिन वो तो जो सफाई करने वाले हैं जिनकी सेवा है उनका काम है, हम नहीं करेंगे। नहीं, भक्त को चाहिए कि अपनी सेवा से भी बढ़कर अगर कुछ हो, अगर कर सके तो करना चाहिए। दूसरे शब्दों में जितना हो सके, जितना हमारी शक्ति, हमारी बुद्धि, हमारा बल, हमारी योग्यता इत्यादि साथ दे, उतना भगवान की सेवा करनी चाहिए हमें, और प्रथम श्रेणी के सेवक बनने का प्रयत्न करना चाहिए, हनुमान जी जैसे। तो इस प्रकार से श्री राम ने हनुमान का गुणगान करना आरंभ किया। तो हनुमान जी हमेशा यहाँ रहते हैं इस भौतिक ब्रह्मांड में, किम पुरुष वर्ष में, जम्बूद्वीप का एक वर्ष है, इसको किम पुरुष वर्ष कहते हैं। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में इसका वर्णन है कि किम पुरुष वर्ष के लोग जो है वो हमेशा प्रभु रामचंद्र जी की सेवा में तत्पर रहते हैं, गुणगान करते रहते हैं, और हनुमान भी ऐसे प्रार्थना करते हैं। तो हनुमान जी की सुंदर प्रार्थना है श्रीमद् भागवत में हम पढ़ सकते हैं, बड़ी अच्छी प्रार्थनाएं हैं। और हनुमान जी भी हमेशा रामायण का पाठ करते रहते हैं, रामलीला को पढ़ते रहते हैं। कभी कभी कोई भौतिक दृष्टि से भगवान की लीलाओं को समझने का प्रयास करे, खास करके रामायण, तो वो सोचेगा कि अरे ये रामलीला में तो दुख ही दुख है, दुर्घटना ही दुर्घटना है, इसको पढ़ने से हमें दुख मिलता है, सुख कहां, आनंद कहां मिलता है। देखिए शुरुआत होती है दशरथ महाराज से, दशरथ महाराज को वो शाप मिला, वो कि उनका पुत्र उनसे अलग हो जाएगा, और फिर कैकेयी की वजह से राम को वनवास में भेजा गया, फिर दशरथ महाराज की मृत्यु हो गई, फिर वनवास में कितने कष्ट सहन करने पड़े श्री राम, सीता और लक्ष्मण को, और फिर आगे चल के भरत महाराज, उनको कितना दुख हुआ, उनको बाहर रहकर राज्य का कारोबार संभालना पड़ा, फिर इतने राक्षस आए उनका सामना करना पड़ा श्री राम को, आगे रावण ने सीता का अपहरण कर लिया, सीता को कितना कष्ट, राम को कितना कष्ट, और आगे चल के फिर सारे लंका नष्ट हो गया। और विजय प्राप्त करने के बाद में सीता देवी को लाने के बाद में भी राम ने स्वीकार नहीं किया, सीता देवी को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। और इतना होने के बाद जब अयोध्या लौटकर आए और राजा हो गए, दोबारा सीता देवी को एक धोबी के कहने पर वनवास में भेज दिया और उनके पुत्रों का जन्म विवाह हुआ, पुत्रों ने भी अपने पिता को नहीं देखा। मतलब दुखी तो खर रामायण में, तो आनंद कहाँ है? तो प्रभुपाद जी बताते हैं, अगर ऐसा होता तो हनुमान जी रोज इसी रामायण का पाठ क्यों करते? क्योंकि इस कथा में या किसी भी भगवत कथा में दुख नहीं होता, भले भौतिक दृष्टि से लगे कि दुख हो या सुख हो, लेकिन भगवान की लीलाएं हमेशा दिव्य आनंद प्रदान करते हैं। हनुमान जी भी दिव्य आनंद की अनुभूति करते हैं ये सब पढ़ के। जब प्रभु राम सीता देवी के विरह में शोक कर रहे थे तो उस शोक में भी उनको दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। जिस प्रकार से कृष्ण भगवान को गोपियों के विरह में जो दुख मिलता था, वो दुख वास्तव में आनंद होता था। आध्यात्मिक क्षेत्र में कोई दुख नहीं होता, दुख भी सुखी होता है, लेकिन भौतिक जगत में जो सुख होता है वो भी वास्तव में दुख होता है, लेकिन उसको हम सुख समझते हैं। तो आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन में ये अंतर होता है। जो रस परायण होते हैं, जो रस तत्व में निपुण होते हैं, भक्ति रस तत्व में, वो जानते हैं कि ये वास्तव में दुख नहीं है, दिव्य आनंद है। भगवान की लीला दिव्य आनंद के स्तर में की जाती है, इसलिए इनमें भी एक प्रकार का दिव्य रस मिल जाता है। इस प्रकार से हनुमान जी भी इस दिव्य आनंद की अनुभूति हमेशा करते हैं और बार बार प्रभु रामचंद्र जी के गुणगान में ही व्यस्त रहते हैं। इस प्रकार से हमें भी हनुमान जी के पद चिन्हों में चलना चाहिए, भगवान की सेवा उसी निष्कपट निस्वार्थ और शुद्ध भावना से करनी चाहिए जैसे कि हनुमान जी करते हैं। हनुमान जी की कृपा से अवश्य ये हमारे लिए भी संभव होगा। तो हम आज हनुमान जी के जयंती के दिन, हनुमान जी के आविर्भाव के दिन हनुमान जी से प्रार्थना करें कि वो भी हमें आध्यात्मिक बल दें जो कि उनमें है, जिस बल से हमारे हृदय में जो भी भौतिक कलमश है, अनर्थ है, घमंड है इत्यादि, सब चूर चूर हो जाए, नष्ट हो जाए और हमारे हृदय में भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति जागृत हो जाए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। कोई प्रश्न इत्यादि है?
प्रभु जी, हम देखते हैं कि आजकल हनुमान लोग हनुमान की पूजा करते भौतिक इच्छा पूर्ति के लिए, क्या हनुमान ये इच्छा पूरी करते हैं? और जो प्रसाद चढ़ाया जाता है हनुमान को, तो क्या हम वो ग्रहण कर सकते हैं?
हाँ, आजकल जो लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं, कई लोग, ज्यादातर लोग भौतिक इच्छा के लिए, भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए करते हैं, लेकिन ये तो केवल हनुमान जी के साथ नहीं होता है, भगवान के साथ भी होता है। ज्यादातर लोग आजकल मंदिर नहीं जाते हैं और जो जाते हैं उनमें से ज्यादातर लोग केवल भौतिक इच्छा की तृप्ति के लिए, पूर्ति के लिए जाते हैं। तो बात वही है, क्योंकि शुद्ध भक्ति की भावना बहुत कम है, बहुत बहुत कम। केवल इंद्र तृप्ति को पूरे करने के लिए धर्म को, भगवान के मंदिरों को एक उन्होंने निमित्त बनाया है। तो लेकिन भगवान कृपालु है, उनकी इच्छा शायद पूरी भी कर दें, तो हनुमान जी भगवान की तरह है, पूरी भी कर देते होंगे, लेकिन धीरे धीरे से उनको उनकी चरण कमलों की ओर आकृष्ट करते हैं। और जो हनुमान जी की पूजा बिना कोई भौतिक इच्छा के करते हैं, तो हनुमान जी उनको श्री राम के चरणों में ले जाते हैं, क्योंकि दास हमेशा ये चाहता है कि सभी लोग मेरे प्रभु के दास बने, इसलिए हनुमान जी भी चाहते हैं कि हम श्री राम के चरण में जाएं। और दूसरा प्रश्न क्या था? प्रसाद, हनुमान जी के प्रसाद हमें लेना चाहिए कि नहीं? वैसे हनुमान जी महाभागवत शुद्ध भक्त है तो उनका प्रसाद अवश्य ग्रहण कर सकते हैं, परंतु ये भी महत्वपूर्ण है कि किसने भोग चढ़ाया है, किस तरह से चढ़ाया है, किस भावना से चढ़ाया है। ज्यादातर जो लोग कर्म कांड के भाव में हनुमान जी को चढ़ाते हैं प्रसाद, वो गलत भावना से चढ़ाते हैं, शायद उनको ज्ञान नहीं है कि हनुमान क्या है, कौन है। इसीलिए मान लीजिए अगर कोई मंदिर भी हो, विष्णु का भी मंदिर हो, लेकिन वहां कोई कर्मकांडी लोग भगवान को भोग चढ़ाते, जैसे सत्यनारायण पूजा करते हैं, वैसे सत्यनारायण पूजा कहीं शास्त्रों में है नहीं इसका उदाहरण, लेकिन समाज में बहुत बड़े पैमाने से प्रचलित है, लेकिन वो भी नारायण का रूप है, लेकिन शायद हम उसको ग्रहण करने के लिए इतने उत्सुक नहीं हो, क्योंकि जिस भावना से वो भोग चढ़ाया जाता है वो सही नहीं है, और दूसरी बात उनको ज्ञान नहीं है कि नारायण या विष्णु स्वयं भगवान है, वो उनको भी और देवी देवताओं के समान ही समझते हैं, तो वो भावना भी उस प्रसाद के माध्यम से हमारी चेतना में आ जाती है, इसलिए हमें थोड़ा बहुत होशियार रहना चाहिए इसके बारे में। लेकिन जहां हम जाते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि दूसरों का हृदय दिल नहीं दुखाना पड़ता है, तो थोड़ा कुछ अगर हनुमान जी का है तो थोड़ा कुछ ग्रहण कर सकते हैं, तो परिस्थिति के हिसाब से हमें निर्णय लेना चाहिए। और कोई प्रश्न है
जी? और शनिदेव और हनुमान के बीच में जो लीला हुए,
इसके बीच में
शनिदेव,
शनिदेव
उसके बारे में थोड़ा,
शनि या राहु?
शनि शनिवार को जो हनुमान को पूजा करते हैं तो शनि और हनुमान के बीच में दोस्ती ऐसा भी बोलते हैं।
हाँ, और राहु के साथ दुश्मनी भी है। वैसे वो ये लीला उस समय की है, खास करके वो आज शाम इसका वर्णन करने वाले हैं वैसे विस्तार में, तो उस समय चर्चा करेंगे, लेकिन खास करके जब हनुमान जी, आप सब जानते हैं, वो सूर्य की ओर कूद रहे थे, तो सारे राहु वगैरह सब चिंतित हो गए कि सूर्य को खाने का जो अधिकार केवल हमारा है, अब ये कौन आ गया, नया राहु, नया केतु, कौन सब आ गए, तो उस समय वो लीला हुई, उसका वर्णन हम आज शाम को करेंगे। वैसे देखा जाए तो हनुमान जी की लीलाएं बहुत सारी हैं, और हमें यह भी देखना चाहिए कि अन्य लीलाएं कहां कहां से आती हैं, केवल जो अधिकृत जगह से जो हम लीला पढ़ते हैं उसी का हमें श्रवण करना चाहिए, जो वाल्मीकि रामायण हो या पुराण हो या अधिकृत ग्रंथों से ही हमें लीलाएं सुननी चाहिए। वैसे लोक कथा में ऐसे कई चीजें हो सकती है, लेकिन जब तक ये लीलाएं कोई शास्त्रों में इनका प्रमाण नहीं मिलता तो इनके ऊपर हम ज्यादा जोर नहीं दे सकते।
हरे कृष्णा, कि जब प्रभु रामचंद्र जी शो करते वन में जाते थे, तब शिव जी और पार्वती में एक संवाद होता है, और जो पार्वती जब प्रभु रामचंद्र की परीक्षा लेने के लिए धरती पर आती है, तब वो जान जाते हैं कि वो बोलते कि माते तुम यहाँ क्यों आ गए, लेकिन पति का जब वो सुनती नहीं है तो शिवजी उनको कुछ ऐसे शाप या कुछ दे देते, वो क्या है?
शिवजी का स्तर प्राय भगवान का स्तर है, इसलिए उनके बीच में और पार्वती जी के बीच में जो लीला है वो भी एक अलग श्रेणी की लीला है, इसको भी हमें साधारण बात नहीं समझनी चाहिए, और वैसे भी ये लीला कौन से पुराण में आती है हमें नहीं मालूम, वाल्मीकि रामायण में तो नहीं आता है, अध्यात्म रामायण में तो नहीं आता, तुलसी रामायण में नहीं आता, पुराण में भी नहीं आता, तो ऐसे कई कथाएं हैं जिनके बारे में संशय है कि ये प्रामाणिक कथाएं हैं भी या नहीं, तो जब तक इनको इनका कोई सोर्स प्रामाणिक तौर से पता नहीं चले इसके बारे में टीका करना भी उचित नहीं है।
हरि बोल। जो हनुमान है जो शिवजी का अवतार है ऐसा कहा जाता है, तो जैसे वो शिवजी है जो रावण को आशीर्वाद दे रहे, इधर हनुमान भगवान के साथ दे रहे, तो ये जरा संशय हो जाएगा कि ऐसे क्यों, मतलब इधर ऐसे
शिवजी से शिवजी के अंश हैं और वायुदेव ने उनको लेकर उनको ले गए थे शिवजी के बीज को, इसलिए वो शिव पुत्र भी कहलाते हैं और वायु पुत्र भी कहलाते हैं, दोनों कहलाते हैं, और केसरी नंदन भी कहलाते हैं क्योंकि उनकी माता अंजनी के पति थे केसरी, तो तीनों के पुत्र कहलाते हैं वो। लेकिन ये अलग अलग संबंध है, जो शिवजी का संबंध और वायुदेव का संबंध हनुमान के साथ में है, और दूसरी ओर शिवजी का संबंध रावण के साथ में है, अलग संबंध। शिवजी का रावण के साथ में जो संबंध है